ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री प्रेम सरोवर धाम की, श्री बरसाना धाम की जय हो। तो आप सब लोगों का 23 फरवरी के संध्या के पवित्र बेला पर प्रेम सरोवर धाम में स्वागत है। श्री बरसाने धाम का एक बहुत महत्वपूर्ण कुंड है। श्री बरसाना धाम चार चीजों से बना हुआ है, खोर, खिरक, गिरी और गहवर। खोर यानी बहुत छोटा रास्ता, जो सांकरी कोर कहते हैं उसको। खिरक यानी जल के आशय, सरोवर कुंड जितने भी बहुत सारे हैं, धोनी कुंड है, बिहार कुंड है, जल महल, भानुखर, पीली पोखर, प्रेम सरोवर, प्रेम विवल कुंड, बहुत सारे रत्न कुंड, बहुत सारे कुंड हैं। खोर, खिरक, गिरी यानी पर्वत, चार पर्वत की चोटियां यहाँ पर हैं बरसाने में। और लास्ट है गहवर, गहवर यानी गहवर बन, जो बरसाने का हृदय है, हार्ट ऑफ बरसाना। तो खिरक यानी जलाशय में से एक महत्वपूर्ण जलाशय के पास में हम लोग आ गए हैं। कुछ ही मिनटों के लिए हमें यहाँ पर अंधेरा मिल रहे हैं, जब हम आए थे तो उजाला था, अब आते आते थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। तो हमारा सा विचार है कि नंदगांव जाने के समय 2 मिनट यहाँ रुकेंगे, दिन के उजाले में दर्शन लेंगे। आज दर्शन हृदय से और कान से लेंगे, ठीक है, और परसों सवेरे आँख से लेंगे। सबको मंजूर है? इसके लिए एक ही कंडीशन है कि सबके कान जो है बहुत सतर्क रहने चाहिए आज, और कान के द्वारा पूरी कथा सुन लीजिए और परसों के दिन अनेत्रों से दर्शन कर लीजिए। तो प्रथमतः इस जगह को प्रेम वन कहते हैं। ये बरसाने का गाजीपुर का प्रेम वन है, और मूलतः ये जगह जो है ये राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन की स्थली का दिन स्थली है। वैसे राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन तो रावल में ही हुआ था, जब उनका जन्म हुआ था राधा रानी का। तो श्री कृष्ण बलराम जी अपने माता पिता के साथ में उनके जन्मोत्सव में आए थे, तभी उन्होंने आंखें खोलकर सबसे पहले किल्लोड़ किया था। तो वो उनका सबसे पहले पृथ्वी का मिलन है। जैसे ही कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध राधा रानी के नाकों में प्रवेश किए, तो उन्होंने आंखें खोलकर उनका दर्शन किया, जो उन्होंने गौलोक में वादा किया था कि बिना आपके हम किसी को नहीं देखेंगे, बिना आपकी ध्वनि हम नहीं सुनेंगे, बिना आपके बिना किसी को स्पर्श नहीं करेंगे। तो ये उनके प्रथम मिलन है। तब तो बहुत बालक अवस्था में थे वो। जब रावल और नंदगांव रावल और गोकुल छोड़कर जब ये दोबारा बरसाना और नंदगांव में आए, तब इनकी उम्र कुछ 3 साल 3-4 महीने के आसपास थी। बड़ी ध्यान से सुनिए कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी है। तो एक बार राधा रानी, बहुत छोटी छोटी सी कन्याएं, ललिता, विशाखा और सब सखियां मिलकर लुका छुपी खेल रही थी। और लुका छुपी में कैसा होता है, एक एक को आंखों पर पट्टी बांधते हैं और बाकी सब लोग छुप जाते हैं। फिर वो पट्टी बांधने बांधी हुई लड़की या लड़का जो भी है, वो जब किसी एक बिना पट्टी बांधे हुए व्यक्ति को पकड़ लेगी, तो उस पट्टी को आंखों में पट्टी बांधी जाएगी और बाकी सब लोग छुप जाएंगे। लुका छुपी का गेम खेलते हैं। तो एक सखी को पट्टी बांधकर उन्होंने गोल गोल घुमाया और सब सखियाँ जाकर अपने अपने कहीं कहीं वनों में कुंजों में छुप गई जाके। तो राधा रानी छुपने के लिए इस वन में आई, प्रेम वन में, जिसमें आज ये प्रेम सरोवर बना हुआ है। लेकिन ये पूरा एक वन है, बहुत बड़ा विशाल, इतना सघन कि उस समय इसमें सूरज की प्रकाश दिन में भी प्रवेश करती नहीं थी, इतनी सघन वृक्षावली थी यहाँ पर। तो उस अंधकार में, दिन में जो अंधकार में है, ऐसे सघन वृक्षावली में छुपने के लिए राधा रानी आई, ताकि अच्छा एकांत है, अंधेरा है, गहराई है, सब कुछ है। तो राधा रानी जैसे ही इस अंधकार वाले कुंज में प्रवेश की तो उसे एक सुंदर बालक दिखाई पड़ा, जो सांवले रंग का था, मोर पंख धारण किए था, पीतांबर पहना हुआ था, हाथ में मुरली थी उसके। तो वो बालक जो है, वो जैसे ही उनकी नज़र भेंट हो गई, वो बालक बेहोश हो गया। तो राधा रानी को बड़ी इतना आश्चर्य हुआ, बहुत सुंदर उसको देखकर, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर लड़का तो मैंने कभी देखा नहीं था। देखते ही मन में प्रेम आया, और वो प्रेम समझने के पहले ही देखा कि वो बालक बेहोश हो गया। वो भी समझ रही है कि वो भी ऐसे देख रहा था प्रेम से, और प्रेम के वश होकर बेहोश हो गया। तो ये बहुत बड़े अचंभित हो गए, अभी क्या करूं। तो लगा कि कुछ करना चाहिए, कुछ सेवा करनी चाहिए, कुछ उसको मदद करनी चाहिए। बेचारा आज कुंज में अकेला है, कोई है नहीं साथी, बेहोश पड़ा हुआ है, छोड़ के जाना भी अच्छा नहीं है। तो जब वो जा रही थी उनको कुछ करने के लिए, उतने में पुकार आई, आ जाओ पकड़े गए, आ जाओ, मतलब अभी और छुपने की जरूरत नहीं, चलो अभी। तो वो कुछ करने ही जा रही थी तो बार बार ललिता देवी ने पुकारा, अरे श्री जी कहाँ पर हो, चलो। तो वो बड़े भारी हृदय से उसको उसी बेहोश अवस्था में छोड़कर राधा रानी चली गई, सखियों को मिली, खेल समाप्त हो गया और घर पे चले गए। जब घर पे चले गए तो राधा रानी बड़ी उदास हो गई कि मैंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, इतना सुंदर प्यारा बालक था, इतना प्रेम था उसकी आंखों में, मुझे भी कितना प्रेम की अनुभूति हो रही थी, और कैसे मैं उसको छोड़ के चली आई बेहोश अवस्था में, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तो उस दिन से फिर खाना पीना, खेलना, किसी से बात करना, सखियों से, सब बंद। कीर्ति मैया बड़ी परेशान हो गई, सब लोग बोलने लगे क्यों श्री जी इतनी नाराज़ है, क्या है, रूठी हुई है क्या? नहीं, वो रूठी नहीं है, रो रही है, कुछ उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा है ना, रात को सोती है, कुछ नहीं करती है, बस एक टक जैसे मानो कहीं शून्य में देख रही है, रो रही है, बस रोते जा रही है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ उस कुंज में? बहुत देर बाद श्याम सुंदर जी होश में आए। श्याम सुंदर जी जब होश में आए तो देखते कुंज में कोई नहीं है, वो सुंदर बालिका कहाँ गई? क्या वो स्वप्न था कि सत्य था? कौन थी वो कन्या? किसकी बेटी थी वो? कौन से गांव की थी? कहाँ से आई थी? कुछ पता नहीं है। होश में तो आ गए हैं, बड़े उदास होकर घर पे चले जाते हैं। और जैसे घर पहुंचते हैं, ना माखन खाते हैं, ना मिश्री खाते हैं, ना लोरी सुनते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बिस्तर में मुंह घुसा कर सो जाते हैं। अगले दिन ना उठते हैं, ना कुछ करते हैं, रोते रहते दिन भर, उदास रहते हैं। जिसको माखन इतना प्रिय है, सुबह उठते पहले मुँह में माखन चाहिए, उसको माखन भी बोलते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, माँ की लोरी नहीं अच्छी लग रही है, ना नहाना है, ना वस्त्र पहनना है, ना श्रृंगार पहनना है, ना गौचारण करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत दुखी अवस्था में रो के बैठा है। यशोदा मैया परेशान हो गई। इधर कीर्ति मैया ने ललिता देवी को बुलाया, ललिता हम बहुत सब लोग दुखी हैं, क्योंकि हमारे श्री जी जो है वो कुछ नहीं कर रही है, बहुत उदास है, अब बता नहीं रही क्या हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है लेकिन वो बता नहीं रही है, इतनी गहरी दुख में है वो कि हमने पहले कभी भी ऐसा उसको देखा नहीं। तो बोले कहाँ पर है? बोले अपने कमरे में है। तो ललिता कहते हैं मुझे अकेले में मिलना पड़ेगा उसको, उसके दिल की बात जानने के लिए। तो कुछ भी करो, हम कोई नहीं आएंगे, आप जाओ उनसे बात करो। तो फिर श्री जी से ललिता देवी अकेले में अंतापुर में मिलती है। तो श्री जी कहती है कि हाँ उस दिन जब हम लुका छुपी का खेल खेल रहे थे आँख मिचोली, उस समय एक सुंदर सा नीला बालक वहाँ पर था और आप पुकारती रही इसलिए आप मैं खींचती गई आपकी ओर, लेकिन वो बालक वहाँ बेहोश हो गया था और मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, मैं बड़ी दुखी हूँ। तो ललिता ने वर्णन पूछा तो उन्होंने कहा कि पीताम्बर पहना हुआ था, सांवले रंग का था, बड़े सुंदर घुंघराले बाल थे, बालों में मोर पंख था, हाथों में मुरली थी, कमल जैसी आंखें थी उसकी। तो ललिता कहते हैं कोई चिंता मत करना, मैं ढूंढ लूंगी उसको ब्रज में से। उतने में ललिता को यशोदा मैया से बुलावा आया तो वो नंदगांव चली गई। यशोदा मैया ने कहा हमारा लाला कितने दिन हो गए न माखन खाता है न खेलता है न वत्सों को पालन करता है न गौशाला जाता है, पहले वहाँ खेला करता था, अभी कुछ भी नहीं, किसी में रुचि नहीं, न कुछ सुनता है न बजा न मुरली बजाता है, रात को दिन भर रात भर जगता है, रोते रहता है, पता नहीं क्या हो गया उसको, रो किस प्रकार का रोग हो गया है, न भूख न प्यास न नींद न कुछ बोलता है किसी से, कितना पूछा न लड्डू पसंद है न कुछ चीज चाहिए। तो कहती है मैं एकांत में मिलूंगी उससे बात करूंगी। तो कृष्ण भगवान के नंद भवन के अंतपुर में ललिता देवी श्याम सुंदर जी को मिलने जाती हैं। तो श्याम सुंदर कहते हैं वो दिन मैं एक बहुत सघन अंधकार वाले घने वृक्ष कुंज में गया था बरसाने के पास, तो उसमें एक सुंदर गोरी गोरी कन्या आई थी, नीले वस्त्र पहने हुई थी, बहुत सुंदर श्रृंगार किया था, बहुत लंबे लंबे उसके कमल जैसे नेत्र थे, वो जैसे वो वन में प्रवेश किया मैं उसको देखकर इतना दंग रह गया, मेरे हृदय में प्रेम की आंधी उमड़ आई, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया, मेरी कंठ गदगद हो गया उसको देखकर, और कुछ कहूँ कुछ बोलूँ उसके पहले मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब होश में आया तो पता नहीं वो कहाँ थी, कहाँ गई, कहाँ से आई थी, क्या स्वप्न में देखा था कि मैं होश में था कि नींद में था, कहीं भी नजर नहीं आई, पूरे वन में देखा मैंने कहीं पर नजर नहीं आई। फिर मैं बड़ा उदास होकर घर लौट के आया, लेकिन मेरे मन से उस सुंदर कन्या का जो छवि है वो नहीं जा रही है, मुझे अभी उसकी छवि में देखकर मन में ना प्यास लग रही है ना भूख लग रही है ना पानी अच्छा लग रहा है ना भोजन अच्छा लग रहा है ना मक्खन में इंटरेस्ट है ना किसी में, ना नींद आ रही है, कुछ नहीं, किसी भी प्रकार से मुझे उसे मिला दो। तो ललिता जी हंस पड़ती है, वो कहती है कोई बात नहीं मैं ज़रूर आपको उससे मिलाऊंगी। तो मैया से कहती है मैया ऐसा है कि इसका रोग जो है वो ऐसा है कि मुझे उसको मेरे कुंड में स्नान कराना पड़ेगा, मंत्र उच्चारण करने पड़ेंगे और फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो हम उन्हें ले जाएंगे सखियां मिलकर। तो नंदगांव में कुंड है ललिता कुंड, वहाँ पर ललिता जी का स्वयं कुंड है और वहाँ पर वो सब सखियाँ उनको ले जाती हैं और वहाँ पर उस ललिता कुंड में उसको सब सखियाँ मिलकर नहलाती हैं। और वहाँ से थोड़ा आगे एक गाँव है उसका नाम है पहनावली, वहाँ पर ले जाते हैं और बहुत सुंदर वस्त्र उनको पहनाते हैं, ऐसे कहा गया कि उनको दूल्हा बनाते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, इसलिए इस गाँव का नाम पड़ा है पहनावली। पहनावली से सभी सखियां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पहनावली में सब लोग जुलूस निकालते हैं और उनको एक और एक गांव में लेके जाते हैं कजरोठा नाम के गांव के, यहाँ की शिला भी कजरोठा शिला थी, कजरोटी शिला, तो एक गाँव है वहाँ पर नंदगांव के रास्ते में, उसका नाम है कजरोठा। वहाँ पर सखी सारी सखियाँ मिलकर उनको काजल लगाती, उनको पूरी तरह पटका ओढ़ते हुए फेटा बांधते हुए दूल्हा बनाकर जो है इस वन में लेके आते हैं। और वहाँ ललिता जी सखियों को भेजकर राधा रानी को भी समझा बुझा कर कहकर कि हम मिल चुके हैं उसे और ले आ रहे हैं उसको, तो बहुत श्रृंगार अच्छा करके इस प्रेम वन में उनको लेके आते हैं। इसलिए इस तरह से ललिता जी की कृपा से इस प्रेम वन में राधा कृष्ण का पहली बार मिलन होता है गुप्त रूप में सुंदर। तो ये एक इस वन की एक कहानी है, प्रेम वन की कहानी, राधा कृष्ण का पहला मिलन बरसाने में। फिर एक बार इस जगह पर जैसे आप लोग बैठे हो, राधा और कृष्ण बैठे थे, एक दूसरों की आंखों में देख रहे थे, बाकी सब लोग आसपास में खेल रहे थे, एक दूसरे के सामने बैठ रहे, जिसको देख रहे हैं, इतना प्रेम उनको हृदय में अनुभव होता है कि और गहराई में उनका प्रेम आंखों में से, आंखों से आंखों से देख रहे हैं, आंखों की गहराई में देख रहे हैं। उतने में एक मधुमक्खी जो होती है ना, भंवरा, भृंग भृंग, उनके बीच में आते आने गोल गोल घूमने लगता है। तो उनके जो एक एक दूसरे के ऊपर ध्यान था प्रेम का, उसमें भंग होता है। तो कृष्ण जी कहते हैं मधुमंगल को, मधुमंगल यानी उनका मित्र है, हे मधु, इस मधु को यहाँ से निकाल दो, क्योंकि भंवरे का और एक नाम मधु है ना, मधुमक्खी, और उसका नाम मधुमंगल है, तो उसको प्रेम से मधु बोलते हैं। और हे मधु, ये मधु को यहाँ से हटा दो। तो मधुमंगल बड़े कुशलता से उस भंवरे को वहाँ से हटा देता है और कहता है कि मधु चला गया, मैंने उसको निकाल दिया यहाँ से। तो राधा रानी सुनती है, वो उनको लगता है कि मधु यानी कृष्ण चले गए, सामने बैठे हुए हैं, फिर भी ऐसी विचित्र भावना होती है कि वो चले गए, तो वो रोने लगती है। अभी अपनी प्रियतमा को रोते हुए देखकर कृष्ण के भी आंखों से आंसू आने लगते हैं, फिर इनके आंसू आंखों में आंसू देखकर और राधा रानी की आंखों में आंसू आते हैं, फिर राधा रानी की आंखों में और आंसू देखकर कृष्ण के आंखों में और आंसू आते हैं। आगे अभी 100 बार भी कहूंगा तो फिर आगे भी वही चलते रहता है, इतने आंसू बहते हैं दोनों के प्रेम के कि विशाल प्रेम सरोवर तैयार हो जाता है। इतनी सी लीला है, ज्यादा लीला नहीं है। केवल विचार करने की बात यह है कि इतना भी प्रेम किसी का हो सकता है किसी के प्रति। मेरी जब दादी गई थी 1973 में, तो मैं 10 साल का था, मुझे अभी भी याद है, मुझे दादी पर इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। हम लोग खेलने गए थे और तब वो शाम को गुजर गई थी 5 बजे, तो हम लोग खेल छोड़कर भाग के आके घर पे रोए थे, इतना रोए। लेकिन मुझे अभी भी डिस्टिंक्टली याद है, एकदम डिस्टिंक्ट। मैं बच्चा था फिर भी मुझे इस बात का बड़ा याद है कि 1 घंटा बाद मेरे अश्रु ही ख़त्म हो गए, और मुझे लग रहा था अरे मुझे दादी पर इतना प्रेम है, मेरे अश्रु क्यों नहीं आ रहे हैं, वाई आई एम नॉट एबल टू क्राई। लेकिन ना मैं रो पाया, ना मैं अश्रु निकाल पाया उसके बाद में, कुछ देर बाद में। और मुझे उस छोटी सी उम्र में भी ये प्रश्न पड़ा मन में कि अरे दादी पर मेरा इतना प्रेम है, फिर भी अश्रु किधर गए। तो आज मैं सोचता हूँ उसके बारे में तो लगता है कि सब कुछ लिमिटेड है यहाँ पर, एवरीथिंग इज लिमिटेड है। हम कभी यकीन ऐसा ऐलान, मतलब क्या कहते हैं उसको, ये गर्व से कह नहीं सकते विश्वास के साथ में कि मेरा तो अमर्याद प्रेम है किसी चीज़ पर, आई लव अनलिमिटेडली, ऐसा कुछ कह नहीं सकता मैं। किस चीज़ को मैं इतना चाहता हूँ कि मैं 10 साल रोते रहूँगा उसके लिए, ऐसा कह नहीं सकता हम लोग। लेकिन राधा और कृष्ण के बीच में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि कभी गए नहीं, वो अभी सामने ही खड़े हैं आपके, लेकिन केवल सुना, ऐसा भ्रम हो गया कि वो गए। ये बात सुनकर विरह के आने वाले विरह का दुख से ही आंसू आने लगे, और इनके आंसू देकर उनको आ रहे हैं। जैसे समझो हमें किसी के, समझो हम मैयत में जाते हैं, तो हमको तो कोई इतना भावना नहीं होती है, लेकिन 4 लोग रो रहे थे, हमको भी रोना आता है उनको देख के, या हमारे दोस्त को रो के देख के हमको रोना आता है, अरे आई कांट सी हिम क्राइंग सो आई एम क्राइंग लाइक दैट। ऐसा अद्भुत प्रकार का प्रेम है ये। तो मैं जब सोचता हूँ इसके बारे में तो मुझे तो केवल एक ही बात आती है कि दुनिया में जो हमारे अश्रु हैं वो केवल पेन के अश्रु होते हैं, एवरीथिंग इज पेन नथिंग एल्स। यहाँ पर अश्रु की जो प्राधान्यता होती है ना, वो केवल दर्द के वजह से होती है, दर्द, पीड़ा, आतंक, रोग, हाँ, बिछो, कोई मर गया, कोई किसी का हत्या हो गया, किसी का लूटमार हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई फेल हो गया, या कोई गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, कोई किसी ने द्वेष से किसी के मुंह पर एसिड डाला, हाँ, क्या क्या करते हैं लोग दुनिया में। पैसे के लिए बच्चों को खून कर देते हैं, माँ बाप अपने बच्चों का खून करके जंगल में फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं बच्चे को अपने, पैसे के लिए। तो ये दो भौतिक दुनिया जो है ये ऐसे ही दुख भरे अश्रुओं से बनी हुई है, और ऐसे दुख भरे अश्रुओं वाले दुनिया में ऐसे प्रेम की चर्चा करना भी कभी कभी लगता है कि इरेलेवेंट है एकदम। समझेंगे ना लोग, कैसा हो सकता है ऐसे, हाउ इट इज पॉसिबल। यहाँ पर ऐसे कहते कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान चले गए 10 साल की उम्र में, 11 साल 52 दिन की उम्र में चले गए यहाँ से, और 112 113 साल नहीं रहे यहाँ पर, 125 साल में पहले मिले, उसके बाद में बहुत दिन के बाद में यहाँ पर आए। तो कहते हैं हर रोज 112 साल के हर रोज गोपियाँ रोती रही। उद्धव जी जब आए यहाँ पर संदेश लेकर और नंद भवन में नंद बाबा यशोदा को मिलने गए कृष्ण बाबा का, कृष्ण भगवान का संदेश लेकर देने के लिए, तो उन्होंने पूछा, आप देखो ध्यान से सुनिए, उन्होंने पूछा कि कहाँ रहते नंद बाबा, कहाँ घर है उनका। बोलते तो वो पहाड़ पर है, वो पहाड़ पे किधर है पहाड़ पे। तो ब्रजवासी लोग तो उदास रो रहे हैं सब लोग, समझ में नहीं आया क्यों इतना, इतना क्या है मतलब, एवरीबडी इज क्राइंग, गाय रो रही है, बछड़ा रो रहा है, पंछी रो रहा है, तोता रो रहा है, हाँ बकरी रो रही है, भैंस रो रही है, सब रो रहे हैं, एवरीबडी इज क्राइंग। फिर भी पूछा उन्होंने एक व्यक्ति को, उदास व्यक्ति को, कहाँ पर है नंद बाबा का घर। तो उन्होंने कहा ये दो नदियाँ हैं ना, वो पहाड़ से आ रहे हैं ना, वो उसके नदी के किनारे किनारे चले जाना, आप नंद भवन चले पहुँच जाओगे। बोला ठीक है, नदी के किनारे घर होगा उनका, जाएंगे ऊपर। तो वो दो नदियों के किनारे 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 ऊपर 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 चढ़ते गए, तो देख रहा है कि वो एक बड़ा सा महल है ऊपर, उसके अंदर से दो नदियाँ आ रही है। तो बोले नदी के महल के अंदर नदी का सोर्स कहाँ से आ गया। तो महल में प्रवेश किया तो देखा तो नंद बाबा यशोदा माई रो रहे हैं, और उनके आंखों के एक नदी बनी है नंद बाबा की अश्रुओं की, एक बनी है यशोदा माता की अश्रुओं की। तो उनको पता चला कि जब कृष्ण भगवान चले गए तब से ये रो रहे हैं, अब तक रुके ही नहीं हैं, अभी रो ही रहे हैं, वो नदियाँ बह रही हैं, दो नदियाँ बह रही हैं। अभी आप लोगों को लगे तो क्या बेकार की बातें हो रही है, इतना पानी हमारे उधर लैक्रिमल ग्लैंड में होता है क्या। इतना पानी पीना पड़ेगा उसके लिए, पहले वो लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर पानी आने के लिए उतना पानी बहना भी पड़ेगा। ये सब ऐसे ही बातें हैं, बस कविता करने के लिए लिखी ही बातें हुई हैं, सत्य तो है नहीं इसके अंदर कुछ। लेकिन इस सत्य को सत्य के रूप में समझने के लिए उतनी अनुभूति चाहिए ना, उतना अपनी स्थिति होनी चाहिए समझने के लिए। इंग्लिश में कहते हैं ना, इट टेक्स वन टू नो वन। एक चोर को समझने के लिए भी चोर की जरूरत होती है, भाई क्या चोरी की कला है तुम्हारे पास। एक डॉक्टर कितना बढ़िया डॉक्टर है समझने के लिए भी और एक डॉक्टर होना चाहिए, तो बताएगा कि हाँ ये चार में से ये बढ़िया डॉक्टर है, एक डॉक्टर ही बोल पाएगा आपको। वैसे इस तरह के प्रेमी व्यक्तियों को समझने के लिए खुद भी प्रेमी भक्त होना चाहिए। उद्धव जी ऐसे प्रेमी भक्त थे, तो समझ गए वो, कुछ देर बाद समझ गए, अरे बाप रे ये तो बड़ा विचित्र प्रेम है इनका। मैं समझता था कि मैं इतने भगवान के पास में हूँ, इतना नज़दीक हूँ, इतना निकट हूँ, लेकिन इतने दूर है शरीर से, लेकिन इतना भगवान के पास में है भावना से, इतना उत्कट प्रेम है उनका भगवान के प्रति, क्योंकि वो भी स्वयं भगवान से प्रेम करते थे, इसलिए उनको प्रेम और विरह का अनुभव था, उस विषय का ज्ञानी थे वो। इसलिए यहाँ पर तो हम केवल प्रणाम कर सकते हैं, क्या कहें इन अश्रुओं के बारे में, कैसे आते हैं, कैसे बहते हैं, किस भावना से बहते हैं, कितना प्रकार किस प्रकार का गहरा प्रेम है इनके बीच में, इसके विषय में हम जैसे पापी लोग क्या चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वंदन जरूर कर सकते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि जब ऐसी उत्कट लीलाएं हम सुनते हैं पढ़ते हैं, तो साधक भक्त के मन में केवल एक ही भाव होना चाहिए, वो है संपूर्ण आदर भाव, फुल ऑय एंड रेवरेंस के साथ में ऐसी कथाओं को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए और श्रवण करना चाहिए बस, और प्रणाम करना चाहिए इन लीलाओं को, हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि बाकी सारा रहस्य जो है वो अगर उनकी कृपा हुई तो मन में प्रकट होगा, नहीं तो नहीं भी होगा, क्या कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता, तो योग्यता थोड़ी हमारी है, योग्यता देने वाले भी वही है, और योग्यता होने पर अनुभूति भी वही देने वाले हैं। इसलिए हम ऐसे सुंदर प्रेम सरोवर जैसे जगह पर आकर प्रणाम करते हैं, आप लोग भी प्रणाम कीजिए। इतनी उत्कट जगह कभी किसी विश्व में हो सकती है, इसका भी एक प्रमाण यहाँ पर है। यहाँ पर केवल एकमात्र को देखने से जो डर लगा विरह का, उसके वजह से एक विशाल कुंड यहाँ पर तैयार हो गया है प्रेम सरोवर नाम का। प्रेम वन के अंदर, और फिर विशाल कुंड बनने के बाद में सब सखा सखियों ने उनको एहसास दिलाया कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है, आप लोग दोनों के सामने हो, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दोनों का अच्छी तरह से मिलन हुआ, लीला हुई। फिर ये जो विशाल सुंदर कुंड तैयार हुआ, इतना सुंदर अष्टकोणी कुंड, उसमें राधा और कृष्णा ने नौका विहार किया। जितना भी समय ब्रज में थे लगातार रेगुलरली यहाँ पर नौका विहार का मतलब है बहुत सुंदर नौका सजा धजा के रखते हैं, फूलों से, रत्नों से, मालाओं से, दीपों से। सब सखियाँ, कुछ सखियाँ जल में, कुछ सखियाँ बोट में सेवा कर रही हैं, कुछ सखियाँ गा रही हैं, कुछ सखियाँ ऊपर नृत्य कर रही हैं। बोट के अंदर, नौका के अंदर फूलों का बिछोना है, भोजन के पदार्थ हैं, सुगंधित द्रव्य है, और ऐसी अवस्था में सुंदर गीत गाते गाते एक पूरे कुंड के अंदर नौका विहार होता है, रात भर होता है। कभी कभी ब्रह्मा जी की एक रात भर नौका विहार चलता है पृथ्वी के एक रात में। तो ये ठाकुर जी और राधा रानी की नौका विहार की भी स्थली है जिसमें वो नौका विहार का आनंद लेते हैं। उसकी एक स्थिति भी होती है, वैसे तो जब ठाकुर जी यहाँ पर थे तो नित्य रूप में लीला होती थी, लेकिन प्रकट रूप में जब ब्रज में उत्सव होते हैं तो राधा अष्टमी के तीसरे दिन 13th दिन यहाँ पर नौका विहार होता है। तो सब ब्रज जो है, पूरा ब्रज के लोग लौट के आते हैं यहाँ पर, पूरा ये सरोवर पूरा भर जाता है लोगों से, और बीच में ठाकुर जी का नौका विहार संपन्न होता है। हम लोग तो पतित लोग हैं और हमारे मन में भजन भक्ति कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं। बड़ा सुंदर वातावरण है प्रार्थना करने के लिए, अंधेरा है वैसे भी, अपने आप को हम भूल सकते हैं कि हम कौन हैं, और ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे छोटे से संकुचित हृदय में आप, आपकी इच्छा हो तो प्रेम की अनुभूति देना, प्रेम के कण हमारे हृदय में भी उत्पन्न हो जाए ताकि हम भी आपकी प्रेम भरी सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम इस सुंदर वातावरण का लाभ लेते हुए कुछ समय हृदय से कीर्तन करेंगे।